जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotar Satthis Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadramai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Kartik Mas Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki. Granthraj Srimad Bhagavatam, Nova Skandh, Chautha Adhyaya. दुर्वासा मुनि के द्वारा अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध, श्लोक संख्या 28।
तस्मा अदाधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम् तस्मा अदाधरिश्चक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम् तस्मा अदाधरिश्चक्रम् प्रत्यनीक भयावहम् एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणम्।
ऋषि की अनन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है और जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु न हो, किंतु भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण आश्रित रहने से वह भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के लिए आश्वस्त रहता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, नैवो द्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः। भक्त भगवान की सेवा करने के दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतएव वह भौतिक जगत की किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। भगवान यह भी वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम संसार को घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है। यह चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह है, प्रत्यनीक भयावहम्। इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्त संलग्न रहने पर भी उनका साम्राज्य सभी प्रकार से के संकट से मुक्त था। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से भगवान कृष्ण के महान भक्त अम्बरीश महाराज की चर्चा हो रही है। ऐसे भक्तों की चर्चाएं सुनने से हृदय संतुष्ट होता है, पवित्र होता है और हमें भी पता चलता है कि इस भयानक संसार में रहते हुए हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं और कैसे इस पथ में दृढ़ रह सकते हैं। अम्बरीश महाराज के भक्ति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर चुके हैं इस अध्याय में और भगवान उनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने उनको एक भेंट दी। पिछले रविवार के प्रवचन के अंत में हमने ये आपसे कहा था कि भगवान ने एक भेंट दी थी और यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार की भेंट दी तो आपको अगले रविवार आना होगा। अब अगला रविवार आ गया है तो अभी इस रहस्य का खुलासा करने का समय आ गया है। तो वो क्या, कौन सी भेंट थी जो कि भगवान कृष्ण ने अम्बरीश महाराज को दी? तो यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एकांत भक्ति भावेन प्रीतः। तो भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए अम्बरीश महाराज के कि एकांत की भक्ति से, उनके भक्ति भाव से, कि उन्होंने क्या किया, तस्मा तस्मई मतलब उनको, किनको, अम्बरीश महाराज को, अदाद मतलब ददाति उनको, दान दिया, उनको भेंट दिया। क्या दिया? हरिस, हरि ने, स्वयं भगवान हरि या कृष्ण ने चक्रम, उनका चक्र, चक्र का नाम क्या है, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने। प्रत्यनीक भयावहम, प्रत्यनीक भयावहम का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा सारे शत्रु सदैव भयभीत रहते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान ने अपना आयुध, अपना जो अस्त्र है वो स्वयं प्रदान किया अम्बरीश महाराज को। क्यों दिया? भक्त अभिरक्षणम, अपने भक्त महाराज अम्बरीश के रक्षा के लिए। अच्छा, तो वहां से भी आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दो कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं ना, इसीलिए वहां की आवाज भी यहां पर आ रही। कोई बात नहीं, अब और कोई नहीं, रहने दीजिए। तो भक्त की रक्षा के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान कृष्ण का भक्त भगवान की सेवा करने में इतना मग्न रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने भरण पोषण आदि के लिए और अपनी रक्षा आदि के लिए सारी व्यवस्था करने के लिए समय ही नहीं होता और नहीं रुचि होती है। और अक्सर ये देखा जाता है, जो भक्त नहीं होते हैं वो सदैव निंदा करते हैं भक्तों की। दिन भर आप ये सेवा करते हो, जप करते हो, मंदिर जाते हो, अरे संसार का भी कुछ सोचना चाहिए। परंतु भगवान के भक्त भगवान की सेवा में इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि उनको कोई संसार के बारे में परवाह ही नहीं होती है। और जहां तक रक्षा की बात है, वो ये विभाग भगवान का जानकर बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी दफ्तर में अलग अलग विभाग होते हैं जिनके निर्धारित कार्य होते हैं, तो एक विभाग का कार्य दूसरा विभाग नहीं संभालता है, तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए भक्त की रक्षा का विभाग भगवान के पास है। तो भक्त को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें मूर्खतावश खतरा अपने ऊपर मोल लेना चाहिए जानबूझकर या लापरवाही के कारण। जब ये कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान भक्त की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त को लापरवाही करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि साधारणतः जितना एक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है उतना भक्त कर लेता है, परंतु उससे अधिक नहीं। ये संसार में देखा जाता है कि लोग अपनी रक्षा के लिए, अपनी अपनी रक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, अनेक व्यवस्थाएं करते हैं। कोई बैंक में पैसा रखते हैं तो कोई पुलिस के पास, कोई यहाँ वहाँ, कोई अपने घर में कोई बंदूक रखते हैं, कोई कुछ न कुछ तरह तरह की व्यवस्थाएं अपनी रक्षा के लिए करते हैं। परंतु अंततः राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यदि भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है, और यदि भगवान किसी की रक्षा करना चाहे तो उसे मार कौन सकता है। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, जो साधारण एक चिंता होती है या जो व्यवस्था होती है, वो अपनी रक्षा के लिए करते हैं, परंतु उससे अधिक वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है, विशेष करके मनुष्य जीवन में। और जो भी समय उनको मिलता है वो भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। बिना वजह डर डर के रहने में क्या मतलब है। हमारे गोकुल धाम के प्रकल्प के बारे में आप सब जानते हैं, आप में से गए भी हुए हैं वहां पर, तो एक आध बार कभी कभी वहां जंगली जानवर आते जाते हैं, तो कभी कभी भक्त घबरा जाते हैं, खास करके जो वहां नहीं रहते। वहां के भक्त तो नहीं घबराते, परंतु जो कभी बाहर से भक्त आते हैं तो सोचते, अरे जंगली जानवर जंगल में होते हैं तो हम यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, कितना खतरा है। तो एक बार जब ऐसे भक्त हमसे कह रहे थे, हमने कहा कि वहां जो खतरा है ना हमारे जान के ऊपर, वो शहर में रहने से कम है। क्योंकि शहर में आदमी जा रहा है बेचारा, सड़क पे जा रहा है, पीछे से कोई ठोकर मार के चले जाता है, उस आदमी को पता भी नहीं कि पीछे से गाड़ी आ रही, पीछे उसकी ब्रेक ठीक से चले नहीं, या शराब पी के आदमी कुछ गाड़ी चला रहा था, या कुछ हुआ। कितने ऐसे घटनाएं होती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, और यहाँ पर रहकर इतना तनाव, सबको हर चीज में चिंता, और खास करके मनी, पैसे के बारे में चिंता मनी। वो असली चिंता मनी हो जो होता है उसको, उसकी चिंता नहीं करते, वो मनी पैसे के बारे में चिंता करते हैं, और इसलिए अपने जीवन में इतनी परेशानी लाते हैं। तो भय होता है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशाद अपि तस्य विपर्ययो स्मृतिहि। तो भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान को अपना पीठ दिखा लेता है, तो फिर उसके जीवन में चिंता और भय स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। जिस प्रकार से दिन के समय भी यदि हमने सूरज को पीठ दिखाया तो सूरज की रोशनी सब जगह होते हुए भी हमारे सामने अंधकार हो जाएगा। किस प्रकार का अंधकार? हमारे छांव का अंधकार, हमारी छाया तो सामने रहेगी, क्योंकि हमने भगवान को, सूर्य को पीठ दिखाया है। तो उसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति में किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, परंतु जब हम भगवान को पीठ दिखाते हैं, अर्थात भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान की परवाह नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर अज्ञान का अंधकार आ जाता है, और उस अंधकार में व्यक्ति भयभीत हो जाता है। जैसे रात में जब हम बाहर निकलते हैं और यदि अंधेरा होता है, कोई बिजली आदि नहीं होती है, तो बड़े सावधानी से चलना पड़ता है, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढे में गिर न जाए। परंतु जब सूरज की रोशनी होती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए फिर कोई चिंता नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति के प्रकाश के कारण व्यक्ति निर्भय हो जाता है और इसकी भौतिक चिंताएं नहीं रहती हैं। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के संबंध में एक श्रीमद् भागवत का श्लोक बताते हैं। नैवो द्विजय परतुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख इंद्रिय चेत सार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से, न उद्विजे, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होता हूं, भयभीत या चिंतित नहीं होता हूं, मैं नहीं हूं संसार के किसी भी कारण से। वैसे तो यह संसार बहुत भयानक जगह है, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, अपघात, तरह तरह के, कौन एक पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पद पर कोई ना कोई विपद होता है, हमें पता नहीं कि क्या होगा, कब होगा। ऐसे एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज कुछ जल्दी में थे, कहीं जा रहे थे, तो उनके पास एक ब्राह्मण आए कुछ दान या दक्षिणा मांगने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आप कल आइए। तो भीमसेन पास में खड़े थे, तो भीमसेन ने जाके खुले सड़क में सब जगह घोषणा की, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, महाराज युधिष्ठिर को निश्चित पता है कि वो कल तक जिएंगे, सुनिए सुनिए सब लोग। तो भीमसेन के कहने का तात्पर्य क्या था कि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें वृद्ध होना चाहिए, छोटे बच्चे की मृत्यु हो सकती है, युवक की मृत्यु हो सकती है, दुर्घटना कहीं भी किसी भी समय हो सकती है, ये संसार में हम कोई ठिकाना नहीं है कब क्या होगा, इसलिए पदम पदम यत विपदाम, तो विपद कभी भी आ सकता है। तो इसलिए भीमसेन ये अपने बड़े भाई को कह रहे थे कि जब धार्मिक कार्य करने का समय आता है उसी समय कर लेना चाहिए, टालना नहीं चाहिए उसी किसी बहाने। तो जब ये ब्राह्मण आपके पास आए हैं, आपको देना है दक्षिण, तो आप दे दीजिए, अब कल की राह देखेंगे, कल किसने देखा है। अब भक्ति को टालने के लिए लोग ये तर्क देते हैं कि कल किसने देखा इसलिए आज मौज करो, तो भक्त लोग क्या कहते हैं, कल किसने देखा इसलिए आज भक्ति करो। तर्क का सही जो अर्थ ये है कि कल क्या होगा हमें पता नहीं, और ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, इसलिए भगवान की भक्ति में शीघ्र में लग जाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैवो द्विजे परतुरत्यय वैतरण्यास, ये वैतरणी नदी, ये जो संसार है बहुत भयानक स्थान है और इसको पार करना प्राय असंभव है, दुरत्यय, इसलिए तरह तरह के कष्टों को हमें झेलना पड़ता है। परंतु मैं विचलित नहीं हूं हे भगवान, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, ऐसे भयानक स्थान में रहते हुए भी मैं बिल्कुल विचलित नहीं हूं। तो मैं क्यों विचलित नहीं हूं, त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, मेरा चित्त आपके गुणगान के अमृत में मग्न है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपको, आपके प्रति पीठ दिखाया है, जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं। शोचे ततः विमुख चेतस, जो विमुख चेतस चेतसा, जो विमुख चेतना वाले हैं, उनके प्रति केवल मैं शोक करता हूं, मेरे लिए कोई मेरी चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से
प्रहलाद महाराज कहते हैं ये सारे लोग दुनिया में भारी भारी बोझ उठाते हैं, भारम उद्वहतो, और बिना वजह अपने ऊपर कष्ट और चिंता को आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं। और वैसे भी भगवान भगवद गीता में कह चुके हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन सब जगह घोषणा कर लो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा। भगवान कृष्ण द्विभुज हैं वृंदावन में, अपने दोनों भुजाओं में उनके पास क्या है, बांसुरी बजाते हैं वो, तो दोनों उनके करकमल बांसुरी बजाने में व्यस्त रहते हैं। परंतु वैकुंठ जगत में वो चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं, तो चतुर्भुज रूप में उनके चारों करकमलों में क्या है, उनके चार आयुध, शंख, चक्र, गदा, पद्म। अब ऐसे बताया जाता है कि ये जो चार भगवान के आयुध हैं, इनमें से दो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हैं और दो दुष्टों को विनाश करने के लिए हैं। दुष्टों को क्यों विनाश करना चाहिए, क्योंकि वो भक्तों को परेशान करते हैं, भक्तों को हैरान करते हैं, सताते हैं। इसलिए दुष्टों का दमन करना, दुष्टों की हत्या करना, ये भगवान अपने आप को भगवान का एक कर्तव्य होता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। तो शंख और कमल पुष्प ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए होता है, और गदा और चक्र दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। हम सब ने ध्रुव महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में सुनी है अनेकों बार। तो जब ध्रुव महाराज कड़ी तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाके, अंततः भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और ध्रुव महाराज भगवान को अपने अंतःकरण में देख रहे थे, ध्यान में, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति तद् योगिनः। तो ऐसे योगी जन जो होते हैं अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करते हैं। परंतु जब भगवान सामने आए प्रत्यक्ष रूप से ध्रुव महाराज के, तो अंतःकरण का जो दर्शन था वो भंग हो गया। तो आश्चर्यचकित होकर उन्होंने आंखें खोल दी कि क्यों भंग हो गया, क्या भगवान अदृश्य कैसे हो गए मेरे लिए। और फिर क्या देखते हैं कि सामने भगवान खड़े हैं, वही भगवान जिनका दर्शन वो अपने हृदय में कर रहे थे, अब वो उनके सामने प्रकट हुए थे। और वो भगवान का नारायण स्वरूप है जिनका नाम है प्रश्नि गर्भ। तो आश्चर्यचकित हो गए ध्रुव महाराज, और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो गए, आंखों से अश्रुधारा होने लगी इत्यादि। भगवान का दर्शन करना ये कोई साधारण बात तो नहीं है, और स्तब्ध रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, मुख से कुछ शब्द निकल ही नहीं रहे थे, और बुद्धि भी बिल्कुल स्थिर हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति के सामने अचानक आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या बोले, अचानक कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति आ गया, समझ लीजिए राष्ट्रपति अचानक आपके सामने आ गए, ये बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति अचानक आपके सामने आ गए, तो क्या कहेंगे हम, कभी बुद्धि काम नहीं करती है। तो सबसे बड़े व्यक्ति तो भगवान है, तो जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज केवल देखते रह गए, और ठीक से देख भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। तो भगवान मुस्कुराए, स्मितहास, हल्की मुस्कान, अपने भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपना शंख लिया और शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के सर से किया, और जैसे ही स्पर्श हुआ भगवान के शंख का, तो फिर ध्रुव महाराज कि हृदय से आध्यात्मिक शक्ति के कारण तरह तरह के सुंदर श्लोक उत्पन्न हुए, उत्तम श्लोक, भगवान का गुणगान प्रारंभ हुआ। गंगोत्री में किस प्रकार से धारा गंगा जी बहती हैं, भर 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 बहने लगती हैं, और वहां से फिर आगे जैसे आप आगे नीचे जाएंगे ऋषिकेश आदि में पानी का प्रवाह कितना सुंदर और तीव्र रहता है, उसी प्रकार से ध्रुव महाराज के मुखारविंद से भगवान का गुणगान आने लगा, अमृत प्रवाह। और ध्रुव महाराज को भी पता नहीं चला कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं। इसलिए भगवान की अंतरंगा शक्ति भक्तों के द्वारा तरह तरह के अद्भुत कार्य कराती है। तो इसलिए भगवान का गुणगान करना ये कोई साधारण बात नहीं है। भक्तों के सिवाय कोई भगवान का गुणगान ठीक से नहीं कर सकता, नहीं उस व्यक्ति का अधिकार है। भगवान का गुणगान करने के लिए भी हमने पद्धति सीखनी चाहिए कैसे गुणगान किया जाता है, नहीं तो गुणगान करने के बजाय अनजाने में हम भगवान का अपमान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को भगवान ने आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया, कैसे, शंख का स्पर्श करने से। तो इस प्रकार से शंख या कमल पुष्प जो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म जो होता है हाथ में, ये दो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। तो भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय है, भगवद गीता में है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। तो जैसे पद्म और शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है, ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो गदा है और चक्र है वो दुष्टों को विनष्ट करने के लिए है। भगवान के गदा का नाम क्या है? कौमोदकी, बहुत अच्छा, कौमोदकी। और चक्र का नाम तो हम सब जानते ही हैं, सुदर्शन। तो जब भगवान ने देखा कि अम्बरीश महाराज इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, दिन भर ये मेरी सेवा में ही लग रहे हैं, यद्यपि ये विश्व सम्राट हैं, तो मुझे अम्बरीश महाराज की रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। देखिए, जब हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो वो व्यक्ति भी बाध्य हो जाता है हमारी रक्षा के लिए। उसके ऊपर एक कर्तव्य का बोझ आ जाता है कि अरे ये मेरे ऊपर निर्भर है तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। परंतु यदि हम उस व्यक्ति के प्रति शरणागत नहीं हैं, तो फिर वो व्यक्ति परवाह नहीं करेगा ना हमारी, सोचेगा वो कष्ट में है भी तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं। जिस प्रकार से एक बच्चा है, बच्चा अपने पालकों के ऊपर निर्भर रहता है, तो पालकों के ऊपर स्वाभाविक रूप से एक बोझ बन जाता है कि मुझे इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। परंतु ऐसी भावना माता पिता के हृदय में दुनिया के अन्य बच्चों के प्रति नहीं होता है। कितने सारे बच्चे दुनिया में हैं, उनके प्रति उतनी तीव्रता से भावना नहीं होती, क्योंकि ये बच्चा हमारे ऊपर निर्भर है, शरणागत है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए भगवान के भक्तों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि भले ये इतना बड़ा शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, भले इसकी बड़ी सेना इतनी क्यों ना हो, इसकी रक्षा के लिए इसके सेनापति लोग सब बहुत सारे खड़े हैं यहां पर, फिर भी इसकी रक्षा का विभाग मेरा है, मैं ये स्वयं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, फिर उन्होंने अपना चक्र प्रदान कर दिया। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ अर्थात जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के विभागों का ज्ञान है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में भगवान को ज्ञान नहीं है। तो उनको पता था कि आगे चल के कष्ट आने वाला है अम्बरीश महाराज के जीवन में, इसलिए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र वहां दे दिया। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए महाराज अम्बरीश ने अपनी महारानी के साथ में एकादशी और द्वादशी के व्रत का पालन किया। तो अम्बरीश महाराज इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी भक्ति के व्रतों का, नियमों का पालन बड़े दृढ़ता से पालन करते थे। उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं भी राजा हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, बल्कि वो इतनी अधिक मात्रा में ये सारी चीज़ें करते थे कि सारे राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को आदि सौंप दी थी और वो लोग संभाल रहे थे। दिन भर ये भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते, तो कभी नाम जप और नाम संकीर्तन करते, तो कभी भागवत आदि का पठन करते। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपना समय बिताया करते थे और उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह थी। ये एक आदर्श जोड़ी होती है जो दोनों भगवान की भक्ति में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। देखिए, अनुकूल और प्रतिकूल जोड़ी का विचार होता है ना संसार में, है कि नहीं? अभी पति एक प्रकार के विचार का है, पत्नी की विचारधारा कुछ अलग है, तो ये प्रतिकूल जोड़ी है। पति चाहता है भक्ति करें, पत्नी चाहता है सिनेमा जाएं, समस्या है। या तो फिर पत्नी चाहती है कि मंदिर जाएं, पति कहता है कि हम सिनेमा जाएं, समस्या है। तो ये प्रतिकूल जोड़ी हो जाती है। अनुकूल जोड़ी क्या है? पति कहता है सिनेमा जाएं, पत्नी कहते हैं सिनेमा जाएं, दोनों सिनेमा जाते हैं, फिर आपस में झगड़ा नहीं। वैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करेंगे, वो दूसरी बात है, परंतु कम से कम आपस में तो सिनेमा देखेंगे अच्छी तरह से। परंतु श्रेष्ठ अनुकूल जोड़ी वो है जहां पति हो पत्नी हो, दोनों ही बड़े उत्साह से, प्रेम से भगवान के भजन कीर्तन में, सेवा में लगे रहें। यही वास्तविक गृहस्थ जीवन है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुल्यशीलया, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि जितनी योग्यता अम्बरीश महाराज की थी भक्ति में, उतनी ही योग्यता उनकी पत्नी की भी थी, इसलिए दोनों ने इस एकादशी और द्वादशी के व्रत का पालन किया। एकादशी के व्रत का पालन करना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए ये व्रत बहुत सुलभ बना दिया है। पहले जो वास्तव में वैदिक सभ्यता के अनुयायी थे वो लोग निर्जल उपवास रखा करते थे एकादशी के दिन। साधारण व्यक्ति भी, हर एक व्यक्ति रखता था उपवास पूरी तरह से निर्जल उपवास। परंतु आगे चल के जैसे कलयुग आगे बढ़ा, ऐसी तरह इस तरह की तपस्याएं करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखा कि आजकल के लोग यहाँ ये सब नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सरल बना दिया, कहा कि ठीक है भाई, अनाज नहीं लेना, ठीक है, दालें आदि नहीं खाना, दूध ले लो, फल ले लो, ये सब चीज़ें ले लो, परंतु ऐसा नहीं कि बस ऐसे फल ले लिए, वो मराठी में जैसे कहते हैं एकादशी दुप्पट काशी, वैसे भी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें वर्जित नहीं हैं उनको अधिक मात्रा में खाएं, फिर व्रत का जो भाव है वो खराब हो जाता है। तो हमें इनका पालन करना चाहिए, इन व्रतों का। तो एकादशी को कहते हैं हरि वासर, हरि का दिन, वासर मतलब दिन, सोम वासर, मंगल वासर, बुध वासर, तो वासर का वार हो गया फिर, इसलिए सोमवार, बुधवार, मंगलवार इत्यादि। तो हरि वासर ये भगवान श्री हरि का दिन है, और ऐसे हरि वासर में हमें उपवास करना चाहिए। उप मतलब निकट और वास मतलब रहना या निवास करना। तो उपवास का वास्तविक तात्पर्य है कि हमें भगवान के निकट रहना चाहिए। तो भगवान के निकट कैसे रह सकते हैं हम? उनकी सेवा करके, उनका उनके नामों का जप कीर्तन आदि करके, कृष्ण भावना भावित रह के। तो उपवास शब्द का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम भोजन नहीं खाते। साधारणतः उपवास शब्द का अर्थ ऐसे ही लोग जानते हैं कि उपवास क्या है कि हम कुछ आज चावल नहीं खाएंगे या कुछ ऐसे विशेष पदार्थ नहीं खाएंगे। परंतु उपवास शब्द का तात्पर्य और बहुत गहरा है। कोई वस्तुओं को नहीं खाना किसी एक दिन पे, ये उपवास का एक छोटा भाग है। प्रमुख भाग है कि हम इतने सारे भक्ति के कार्य करें उस दिन पर कि भगवान के निकट अपने आप को स्थित करा दें हम। तो हरिवासर के दिन हमारी भक्ति के कार्यों को बढ़ाना चाहिए और उपवास भी करना चाहिए। इस तरह से अम्बरीश महाराज अपने पत्नी के, अपनी रानी के साथ एकादशी और द्वादशी का उपवास और व्रत का पालन कर रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये जो घटना हुई ये कार्तिक महीने में हुई, इसलिए ये प्रथा, ये जो ये एक प्रसंग जो चल रहा है ये उपयुक्त है इस समय पर, क्योंकि ये लीला भी अब जो वर्णन होने जा रही है वो कार्तिक महीने में हुई थी, वृंदावन में हुई थी, यमुना के तट पे हुई थी, मधुवन में हुई थी। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नातः कदाचित कालिंद्याम हरिम मधुवने चयात चयत। व्रतांते, जब व्रत का अंत हुआ, कार्तिके मासी मतलब कार्तिक मास के अंदर, त्रिरात्रम तीन रातों का समुपोषित पूरी तरह से व्रत का पालन किया। तीन रातों में, तीन रात अर्थात एकादशी के पहले जो दो तिथियां हैं, दो दिन हैं, उन दो रातों में और फिर एकादशी के रात्रि में, त्रिरात्रि में। वास्तव में प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए सुलभ केवल इतना करके नहीं बतलाया है कि हमें केवल अनाज आदि नहीं खाना चाहिए। वास्तव में जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एकादशी के लिए भक्त को चाहिए कि वो दिन भर उपवास न करे, उपवास करे, कुछ खाए नहीं, मतलब द्वादशी के रात से उपवास करे, दिन भर एकादशी में कुछ खाए नहीं, रात भर कुछ खाए नहीं और सोए भी नहीं, बिना खाए बिना पिए बिना सोए केवल भजन कीर्तन करना चाहिए, ये एकादशी है। तो गिरिराज महाराज एक बार बताते हैं कि जब अमृतसर पंजाब में प्रभुपाद जी थे, यात्रा के लिए गए थे, तो यमुना माता जी उनको पढ़ के सुना रही थी। तो पढ़ के उनकी जो शिष्या थी यमुना माता जी, तो यमुना माता जी ने जब ये पढ़ा तो प्रभुपाद जी से पूछा कि श्रीला प्रभुपाद, क्या एकादशी का पालन हमें इस तरह करना चाहिए जैसे आपने यहां इस ग्रंथ में लिखा है? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि आजकल यहां भक्त इतने व्यस्त होते हैं सेवा के लिए कि ये सब अभी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, दो रात सोना नहीं, दिन भर सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, केवल जप करना है और सेवा करनी है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितना आसान बना लिया हम सब के लिए। तो जो बताया है प्रभुपाद जी ने नियम एकादशी के लिए, कम से कम उतना तो करना ही चाहिए। तो खैर, त्रिरात्रम समुपोषित स्नात है कदाचित कालिंद्याम, और उसके बाद में फिर यमुना में उन्होंने स्नात है मतलब स्नान करना, कालिंद्याम, कालिंदी ये यमुना जी का एक नाम है, कलिंद पर्वत से बहती हैं यमुना जी, इसलिए उनका नाम है कालिंदी। आप में से जो सन 2012 में यात्रा में आए थे, बद्रीनाथ, और गंगोत्री यमुनोत्री, आपको याद होगा कालिंदी पर्वत भी देखा होगा आपने, कलिंद पर्वत दूर में दूर से, तो कलिंद पर्वत से बहती हैं इसलिए उनका नाम है कालिंदी। तो कालिंदी यमुना में स्नान किया उन्होंने, हरिम मधुवने अर्चयत, और फिर वृंदावन का वो भाग है मधुवन उसमें भगवान श्री हरि के अर्चा विग्रह की उपासना करने लगे अम्बरीश महाराज। फिर उन्होंने भगवान के श्री विग्रह का अभिषेक किया और तरह तरह से श्रृंगार किया, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण आदि प्रदान किए भगवान को, अलग अलग सुगंधित फूल अर्पण किए, मालाएं बनाई, और फिर बड़े बड़े ध्यान से उन्होंने आरती वगैरह भी कर ली भगवान की। ऐसे सेवा अम्बरीश महाराज स्वयं करते थे, ऐसे नहीं कि अब मैं बड़ा राजा हूं मेरे घर में किसी और को सेवा करने के लिए रख दूंगा, ऐसे नहीं है, स्वयं उन्होंने किया। और फिर जब आराधना इत्यादि समाप्त हो गई तो उन्होंने अपने सारे अतिथियों को संतुष्ट किया, विशेष रूप से जो ब्राह्मण वहां पर आए थे, और उन्होंने दान दिया। क्या दान दिया? केवल हमारे लिए एक सुनने लायक गोष्ठी बात है, परंतु हम ऐसा दान कर तो नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अम्बरीश महाराज ने 60 करोड़ गायों को दान में दिया, अर्बुद, अर्बुद मतलब 10 करोड़। तो 60 करोड़ गायों को दान दिया ब्राह्मणों को, और हर एक गाय के सींगों पे सोना था, और एक चांदी, उनके जो खुरे हैं उनमें चांदी थी, चांदी के जूते थे, और फिर तरह तरह के आभूषणों से वो अलंकृत थे, और उनके जो थन थे दूध से भरे हुए थे, और मृदु स्वभाव के थे, दिखने में बहुत सुंदर थे, और उनके बछड़े भी उनके साथ में थे। तो ऐसे गायों को दान उन्होंने दिया और फिर सारे ब्राह्मणों को खिलाया, सबको संतुष्ट किया, और फिर उपवास तोड़ने जा रहे थे। देखिए, दान देना है तो अच्छी तरह से, जैसे गाय को दान देते हैं ना। तो एक बार ऐसे हुआ, यहाँ हमारे भक्त गौशाला में आए थे, किसी कोई कोई दान लेकर आए, ऐसे गाय को जो चल भी नहीं सकती थी, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे गाय की रक्षा करें। तो हम सब, हमारा विचार है कि भगवान ने भेजा है इस गाय को तो हमें तो रक्षा करनी चाहिए, परंतु देने वाले का विचार कैसे होना चाहिए? देने वालों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं गाय का उपयोग कर लूं, उसे दूध ले लूं, और फिर जब ये दूध नहीं देगी तो चलो फिर दान में दे दें। वो आपको पता है ना, जब वो एक ब्राह्मण गए थे, वो मूढ़ी लेकर जा रहे थे, चुरमुरा जो बोलते हैं, यहाँ मराठी में कुरमुरा बोलते हैं, वो लेके खाते खाते जा रहे थे, अचानक हवा बहने लगा, हवा से वो चुरमुरा जो उड़ गया, और फिर उन्होंने क्या कहा, श्री कृष्णार्पणमस्तु, मैंने कृष्ण को अर्पण कर दिया। अरे अपनी इच्छा से तो नहीं किया ना, हवा तो उड़ा के ले गया, फिर कह रहे अर्पण कर दिया भगवान को, तो ऐसे नहीं होता। तो इसी प्रकार से गाय कैसे होनी चाहिए, भले हम इस तरह से दान न कर पाए, परंतु अच्छे भाव से देना चाहिए, अच्छे अवस्था में देना चाहिए। तो ऐसे अम्बरीश महाराज ने दान दिया, और उस समय, ठीक उसी समय जबकि वो अपने एकादशी द्वादशी व्रत का पारण करने जा रहे थे, पारण का अर्थ है कि उपवास को तोड़ना, तो जैसे ही अपने उपवास को तोड़ने ही जा रहे थे, ठीक उसी समय महान योगी दुर्वासा मुनि वहां पर आ पहुंचे। और आप सबको पता है कि वैदिक सभ्यता में एक नियम है, वो क्या है कि अतिथियों की सेवा तुरंत करनी चाहिए, अतिथि देवो भव। ऐसा नहीं कि अतिथि खड़ा हो जाए दरवाजे पर और हम कुछ दूसरा कार्य करते रहें, उनको कहें खड़े रहिए आप, मैं व्यस्त हूं, नहीं, तुरंत उनको देख लेना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज बहुत ही एक सभ्य व्यक्ति थे, तो उन्होंने तुरंत खड़े होकर दुर्वासा मुनि का स्वागत किया, उन्हें एक बैठने के लिए स्थान दिया, और जो सम्मान के लिए और विधि आदि होते हैं उनका भी पालन किया। फिर दुर्वासा मुनि के चरणों में बैठे और वो दुर्वासा मुनि से निवेदन किया कि हे मुनिवर, कृपया कुछ भोजन स्वीकार कीजिए। तो अतिथि सेवा ऐसे होती है, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, कुछ भी हो, जब साधारण व्यक्ति भी आए तो ऋषि मुनियों की बात तो दूर रही, तो उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम तीन चीजें करनी चाहिए। पहली बात, मीठे शब्दों से स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, बैठने के लिए एक आसन देना चाहिए। तीसरी बात, कम से कम थोड़ा जल तो देना चाहिए। कम से कम, ऐसा नहीं कि इतने में हम उनको कहें कि चलिए कम से कम इतना हमें करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने यथाशक्ति कर ली, क्योंकि वो राजा थे, तो उन्होंने अच्छे ढंग से स्वागत किया। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, परंतु मुझे भोजन के आदि यमुना में जाके स्नान करना होगा, मैं स्नान करके आ जाऊंगा और फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो अम्बरीश महाराज चले गए और फिर क्या किया उन्होंने, निममज्ज बृहद ध्यानम, ध्यान ध्यायन, उन्होंने निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करना शुरू किया यमुना जी में खड़े होकर। वैसे कहा जाता है कि जब हम किसी पवित्र नदी में जाते हैं तो हमें अपने कमर तक खड़े होकर वहां पे ध्यान करना चाहिए भगवान के ऊपर, जैसे गायत्री मंत्र हो हमारे इत्यादि, वो सब हमें उनका जप करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने अपने आराध्य निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया। वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। और समय बीत गया थोड़ा सा, कालिंदी सलिले शुभे, तो शुभ कालिंदी के जल में खड़े होकर वो अपना ध्यान कर रहे थे। तो उधर जो द्वादशी का मुहूर्त था पारण के लिए, वो बीतते जा रहा था और उपवास तोड़ने का समय निर्धारित होता है। उस समय यदि हम उपवास को नहीं तोड़ते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत के प्रति सम्मान करना है तो व्रत को सही समय पर तोड़ना चाहिए, पारण का समय ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो ये एकादशी के प्रति सम्मान होता है, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एकादशी के प्रति अपमान होता है, और एकादशी के प्रति अपमान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपमान, क्योंकि ये हरिवासर है, भगवान श्री कृष्ण का ही दिन है। तो खैर, समय बीत रहा था और दुर्वासा मुनि अभी तक यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, तो बड़े दुविधा में पड़ गए महाराज अम्बरीश कि अब क्या किया जाए। एक ओर यहां उपवास का समय जा रहा था, पारण का समय, यदि उपवास सही समय पर नहीं करें तो एकादशी के प्रति, धर्म के प्रति एक अपराध होगा। दूसरी ओर अतिथि के पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अतिथि को पहले खिलाना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, उसके बाद बैठकर हमें भोजन लेना चाहिए, यह प्रथा है, यह संस्कृति है। तो अभी दुर्वासा मुनि तो आई नहीं, यदि उनके पहले भोजन ग्रहण कर ले वो, उपवास तोड़ ले, तो वो अतिथि के प्रति दुर्वासा मुनि जैसे एक महान योगी के प्रति अपराध हो जाएगा। तो बड़े संकट में पड़ गए अम्बरीश महाराज, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने ब्राह्मणों को, सलाहकारों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अतिक्रमे दोष है, कि ब्राह्मण के प्रति कुछ अपमान करना, ये दोष बहुत भयंकर होता है। तो इसलिए मैं दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध नहीं करना चाहता हूं। उनके यहां लौटने के पहले मैं कुछ भोजन आदि ग्रहण नहीं करना चाहता हूं, और दूसरी ओर भोजन नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं एकादशी के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अपराध कर बैठूंगा। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब उन्होंने ब्राह्मणों से ऐसे सलाह के लिए पूछा तो सबके भिन्न मत थे और कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई सही एक संतोषजनक उत्तर उनको नहीं मिला कि क्या करना चाहिए। तो वैसे ही संकट की अवस्था में बने रहे अम्बरीश महाराज। तो क्या करना चाहिए? पर उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा, क्योंकि वो भी महान भक्त थे ना, वो तो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, और उन्होंने सोचा कि इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। कैसे निकाला जाए रास्ता? मैं चरणामृत लूंगा थोड़ा सा, और ऐसे बताया जाता है कि चरणामृत लेने से, थोड़ा सा तीन बूंद लेने से, वैसे उपवास तोड़ा भी जाता है और व्रत नहीं भी तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से अचिंत्य भेदा भेद है भी और नहीं भी। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने ऐसे थोड़ा सा चरणामृत का पान किया, और जब ऐसे पान किया तो फिर उधर दुर्वासा मुनि को पता चल गया, क्योंकि उनकी योग शक्ति थी। तो वैसे बताया जाता है कि प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार जल पान करना ये भोजन ग्रहण करने से के बराबर भी माना जा सकता है, भोजन ग्रहण नहीं करने के बराबर भी माना जा सकता है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। जैसे जब हम निर्जल उपवास रखते हैं तो उस निर्जल उपवास को यदि तोड़ना है अगले दिन तो हम जल से भी तोड़ सकते हैं, तो उस समय जल का पान करना यह उपवास तोड़ने के बराबर हो जाता है, क्योंकि पिछले दिन हमने जल का पान नहीं किया था। परंतु यदि हमने जलपान किया होगा तो अगले दिन सुबह जलपान करने से वो उपवास नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ा जा सकता, फिर हमें अन्न आदि लेना पड़ता है। तो इसलिए पानी लेना ये उपवास तोड़ने के बराबर भी है, नहीं भी है, ये खाने के बराबर भी है, नहीं भी है। तो बड़े बुद्धिमान थे अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज जब ऐसे किया तो उधर दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे, स्नान समाप्त करने ही वाले थे। अम्बरीश महाराज ने चरणामृत का पान करके अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे थे, और उस समय अपनी योग शक्ति से दुर्वासा मुनि को पता चला कि अम्बरीश महाराज ने जलपान किया है और मैं उनका अतिथि हूं, अतिथि से अनुमति लिए बिना उन्होंने ऐसे किया है तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। और दुर्वासा मुनि को पहले ही भूख लगी थी, और आप जानते हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए भी जब भूख लग जाती है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, तो जब भूख लगती तो भूखे व्यक्ति से तर्क नहीं करना चाहिए, भूखे व्यक्ति को पहले खिलाना चाहिए, बाद में जो बातें कहनी है वो करना। तो घर के लिए मैं बता रहा हूं, आपस में शांति बनाए रखने के लिए। हाँ, तो एक टिप्पणी है, एक सुझाव है, जब कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो ऐसे कोई विवादास्पद कोई बातें उठाई नहीं, तनावजनक कोई बातें उठाई नहीं, पहले भोजन कर ले, फिर भरे पेट बह के जो चर्चा करनी है कर सकते हैं। तो खैर, दुर्वासा मुनि का शरीर कांपने लगा क्रोध के कारण, और उनका मुख जो है वो विकृत, उसका विकृत रूप हो गया। भ्रुकुटी कुटिलानन है, उनका आनन, उनका चेहरा जो है बिल्कुल कुटिल हो गया, भ्रुकुटियां ऐसे हो गई। तो क्रोध के कारण उनके चेहरे पे, इनका चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया, और वो अम्बरीश महाराज के सामने आए। अम्बरीश महाराज वहां हाथ जोड़कर खड़े थे, कृतांजलिम कृतांजलिम अभाषत, अभाषत मतलब दुर्वासा मुनि ने कहना प्रारंभ किया, किनको? अम्बरीश महाराज को, जो कि ऐसे करबद्ध रूप में खड़े थे। अंजलि मुद्रा इसको कहते हैं, कृतांजलिम। ऐसे दुर्वासा मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और दुर्वासा मुनि आए, आग बबूले होकर आए वहां पर, और उन्होंने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अहो पश्यत, अरे देखो तो सही। क्या देखो? नृशंसय, ये देखो इतना क्रूर व्यक्ति है मनुष्य समाज में, ये पशु, ये व्यक्ति कितना क्रूर है। श्रिय उन्मत्तस्य, अपने ऐश्वर्य के कारण ये उन्मत्त हो गया, बहुत घमंडी हो गया है। धर्म व्यतिक्रमम, और इसने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। विष्णोः अभक्तस्य, ये विष्णु का अभक्त है। ये ऐसे अम्बरीश महाराज को कह रहे हैं, जबकि अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे। और आगे कहने लगे, ईशमानिनः, अपने आप को ये भगवान मानता है ये व्यक्ति। देखिए ऐसे भयंकर बातें किसी भक्त से कभी नहीं कहनी चाहिए, इस तरह की बातें। लेकिन दुर्वासा मुनि के बारे में आप जानते हैं कि वो आशुतोष शिवजी के अंशावतार हैं। शिवजी आशुतोष हैं क्यों? क्योंकि जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होना। तो जितने जल्दी शिवजी संतुष्ट होते हैं, वो उतने ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यही स्वभाव दुर्वासा मुनि में भी है। तो दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए और ऐसे सब कहने लगे। वैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दुर्वासा मुनि के शब्दों का एक विपरीत और भक्तिमय तात्पर्य दिया है, क्योंकि अंततः दुर्वासा मुनि योगी का रूप तो ले रहे हैं अवश्य, परंतु हमें याद रखना है कि दुर्वासा मुनि भगवान की लीला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने श्रीमती राधा रानी को एक वरदान दिया था जब श्रीमती राधा रानी छोटी थी, कि तुम जो भी पकाओगे वो अमृत हो जाएगा। कुंती महारानी को भी उन्होंने वरदान दिया था। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि को हम केवल एक योगी और ज्ञानी नहीं कर सकते, उनका भी एक विशेष स्थान है, एक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि इस लीला के द्वारा भक्तों की और भक्ति की महिमा का प्रकाशन होना है। तो खैर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में जब वो कहते हैं कि नृशंसया, इसका मतलब है कि प्रशंसा करते हैं सारे लोग, मनुष्य समाज उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। और जब वो कहते हैं श्रीयोन्मत्तस्य, वो कहते हैं कि अब इनके पास इतना धन है कि अभी ये उन्मत्त होने के परे हो गए हैं, अभी उनको कोई धन की परवाह नहीं है। और वो कहते हैं विष्णु और ईश मानिनः का मतलब है कि वो ईश को, भगवान को बहुत मानते हैं। इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अर्थ बताए हैं। और फिर दुर्वासा मुनि कहने लगे कि हे महाराज अम्बरीश, आपने मुझे यहां एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करके भोजन के लिए बैठने के लिए कहा है, परंतु मुझे भोजन देने के बजाय आप खुद भोजन लेने बैठ गए। और क्योंकि आपके इस अपराध के कारण मैं तुम्हें ऐसे कुछ दिखाऊंगा जिससे तुम दंडित हो जाओगे। अब मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। ऐसे किसी महान भक्त से कहना कितना बड़ा अपराध होता है। फिर लाल लाल उनका मुख हो गया था दुर्वासा मुनि का क्रोध के कारण, और उन्होंने अपने सर से थोड़े बाल उखाड़ लिए, और बाल उखाड़कर उन्होंने उससे एक भयंकर राक्षस तैयार किया। और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो सृष्टि के संहार के समय जो अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे भयंकर राक्षस था। और ये राक्षस आ पड़ा अम्बरीश महाराज की ओर। और उसके बाद क्या हुआ यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार ठीक 1 बजे या उससे पहले आना होगा। फिर इस रहस्य का खुलासा होगा कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को हानि पहुंचा सके या नहीं, या जो भी हुआ उसके बाद अम्बरीश महाराज के ऊपर क्या बीती और फिर दुर्वासा मुनि के ऊपर क्या बीती, ये सब सुनने के लिए अगले रविवार को आप सब अवश्य आए। अम्बरीश महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री कार्तिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय।